نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبق کا آغاز کریں گے. آج کے اس پورے سبق کا بنیادی تھیم کیا ہے؟ امت وسط بننے کے تقاضے. پچھلے سبق میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنر پایا اور وہ کیا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ او مسلمانوں ہم نے تم کو اسی طرح سے امت وسط بنایا جیسے کہ تم سے پہلوں کو بنایا تھا اہل کتاب کو. آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کرنے نکلے گی جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کندھوں پہ ڈالا تو کیا حالات پیش آئیں گے. اور تھوڑا سا آپ کو اور اپنے آپ کو ساتھ لے کر چلوں تو یاد رکھیے کہ امت وسط کے بننے کا حق ادا ہوتا ہے علم کے سیکھنے سے. اس وقت آپ نے اپنے شعور کے ساتھ جو سفر اختیار کیا ہے نا علم کا, گویا کہ یہ شہادت حق کی گواہی دینے کا پہلا مرحلہ ہے. جب ایک انسان علم کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اصل میں وہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ اب اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس رہنمائی کی ضرورت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے نازل کی. پہلے مرحلے پہ وہ خود دین کو سیکھتا ہے, پھر دوسرے مرحلے پہ وہ اس دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے, تیسرے مرحلے میں پھر اس دین کے اوپر دوسروں کو بلانا چاہتا ہے, اور پھر آخری مرحلے میں اس راستے میں آنے والی جو مشکلات ہیں ان کے اوپر جم جاتا ہے. اسی بات کا اظہار ہمیں آج کے اس پورے سبق میں ملے گا. آپ دیکھیں گے کہ آج کا سبق آپ کو صبر سکھائے گا, کیونکہ علم حاصل کرتے ہی جس چیز کا سب سے زیادہ تقاضا ہم سے کیا جاتا ہے وہ صبر ہے. اور جو طالب علم صبر کرنے کی بجائے اپنی من مانیاں کرنا پسند کرتے ہیں تو کہہ لیجئے کہ شہادت حق کے وہ تقاضے پورے نہیں کر سکتے. آئیے آیت کو شروع کرتے ہیں ساتھ ہی, اور اسی سے ہی بات شروع ہوگی کیونکہ آج کے پورے سبق کا ایک ہی تھیم ہے. تو لہٰذا بنیادی بات سمجھنے کے بعد ہم اس قابل ہیں کہ ہم آیتوں کو شروع کریں. آیت 153, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح, اے لوگو جو ایمان لائے ہو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آیت پیچھے بھی گزری, وہاں گزری تھی بنی اسرائیل کے تناظر میں. اگر آپ کا شعور کھلتا جائے نا تو آپ محسوس کریں گے کہ پہلے پارے میں بالترتیب جو چیزیں بنی اسرائیل کے ٹیکسٹ میں آئی تھیں اب دوسرے پارے میں وہی چیزیں امت مسلمہ کے تناظر میں آئیں گی. وہاں آپ کو یہ غالباً بتایا گیا تھا کہ وہ آیتیں جہاں یہ صبر کی بات بنی اسرائیل کے ساتھ آئی تھی وہاں سات آیتیں تھیں, وہ بالکل اسی طرح سے تھی جیسے آج امت مسلمہ کے لیے سورت فاتحہ کی سات آیتیں ہیں. تو انہی میں سے ایک بنیادی چیز کیا تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کے ساتھ مدد مانگو. 19واں رکوع جہاں سے شروع ہوا ہے اور اب آگے تک سورت کے اختتام تک آپ دیکھیں گے کہ براہ راست امت مسلمہ سے خطاب ہے, اور مقصد بتا دیا آیت 141 میں کہ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, کہ تمہارا اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد دوسروں کو اس دین کی دعوت دینا ہے, اس دنیا میں اپنے علم سے, اپنے عمل سے, اپنے رویے سے اور اپنی زبان سے اسلام کی گواہیاں دیتے جاؤ, اور اس راستے میں جو مشکل آئے اس پہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, یہاں خاص طور پہ ان مشکلات پہ صبر کرنے کا حکم ہے جو دین کے راستے میں آئے. صبر کا ذکر قرآن میں بہت جگہ پڑھیں گے, بلکہ اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ پورے کا پورا دین ہی صبر ہے تو آپ کو اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. صبر کیا ہے؟ خود کو روکنا, پتھر رکھنا دل پہ. لفظی وضاحت میں آپ کو بتایا گیا کہ کشتی کے کنارے کو بیلنس کرنے کے لیے وہاں جو پتھر رکھا جاتا ہے اس کو صبر کہتے ہیں, صبر. تو آپ دیکھیں گے کہ پھر صبر کیا ہے؟ روک لینا, ٹو اسٹاپ کے معنوں میں. सबसे पहला सबर क्या कि दिल के अंदर नाराजगी ना आए अल्लाह पे। किसी मामले में इंसान को कोई जिंदगी की छोटी या बड़ी नागवारी दरपेश आए, किसी की मौत की सूरत में, कोई नहीं चाहता कि उसका प्यारा मरे, किसी दुनियावी नुकसान की सूरत में, बेटा मांगा बेटी हो गई, शादी चाही शादी नहीं हो रही, दौलत मांगी गुर्बत आ गई, अपना घर चाहा नहीं मिला, बड़ा घर मांगते रहे छोटा मिला, 1001 प्रॉब्लम्स लिख लें, इन सब हालात पे सब्र का पहला दर्जा क्या होता है कि दिल में शिकवा ना है, ला शिकवा तफीहा, इसको सब्र जमील कहते हैं। आप इंशाल्लाह सूरत यूसुफ में पढ़ेंगे कि फसबरुन जमील, तो सब्र का पहला दर्जा है कि बंदा अपने दिल में अल्लाह से राजी रहे। बाज़ दफ़ा ज़ुबान से चुगलियाँ और गीबतें और शिकवे होते हैं, लेकिन इससे पहले के मरहले में दिल में नाराज़गी होती है। कुछ लोग अल्लाह से रूठे रूठे रहते हैं, मैं नहीं बोलती तो ना बोलो, मेरा ये ले लिया तो फिर मैं क्या करूं, यानी दिल को खुश रखना। अगर आप इस एंगल को लिख लेना तो सब्र का पहला एंगल आपको क्या मिलता है, रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीना, मैं अपने रब के रब होने पे राजी हूँ। जब वो रब है तो जो करेगा वो ठीक करेगा, ए रब जो आखे ठीक आखे, ए रब जो आखे तू ठीक आखे। बंदा रब के फैसलों पे खुशियां मनाए, हु केयर्स कैसा क्यों हुआ कैसा क्यों हुआ, मेरे रब ने मेरे लिए ये डिसाइड किया कि ये नुकसान मुझे पहुंचे, बहुत आला दर्जे की बात है। इसी से फिर अल्लाह से खुश होना, अल्लाह ताला के फैसलों पे राजी होना आता है। इसी से एक बंदा फिर महसूस करता है कि उसका रब उसकी जिंदगी में कितना अहम किरदार अदा करता है। फिर ये नहीं कह सकता कि मेरे ही साथ क्यों, आखिर कब तक, मैंने क्या बिगाड़ा, हाय फुलां 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 फुलां, चाहे दीन के रास्ते में तकलीफें आए या दुनिया के, और दुनिया की तकलीफों पे तो सब्र बहुत आसान है, बहुत आसान है, लोग कर लेते हैं। क्यों कि आज सब्र करेंगे कल उसका फल मिलेगा। मसलन खाना खाने का वक्त भी नहीं मिल रहा दुकानदार को और गाहक पे गाहक आए जा रहे हैं, भूख तो लगी भी है, लेकिन सब्र कर रहा क्यों कि हाथ में वापसी पे बहुत सारे नोट होंगे। यहाँ से सुबह फजर से पहले निकल के 2 घंटे का सफ़र करके जाना कोई आसान काम है? एक बस बदलनी, फिर उससे निकलना, फिर कुछ वॉक करना, फिर ट्रेन लेनी, फिर जाना, क्या बच्चे सब्र नहीं करते? कितना मुश्किल है बिस्तर छोड़ना, वीकेंड पे ही देखें 2 बजे से पहले आँख ही ना खुले, सब्र करते हैं ना, लेकिन वो सब्र आसान लगता है। क्यों कि उसका नतीजा बाद में डिग्री की सूरत में है, कैरियर की सूरत में है। रात की ड्यूटियाँ करना कोई आसान काम है? फितरत के खिलाफ जाके कोई बंदा रात को जागता है, चाहे जितना मर्जी दिन को सो ले, रात रात है। वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा, रात तो छुपाने वाली है लेकिन लोग करते हैं, क्योंकि डबल ड्यूटी है, डबल फायदा होगा, डबल पे मिलेगी। वीकेंड सबको अच्छे लगते हैं, घर में लोग जाते हैं जॉब पे, क्यों सब्र करेंगे तो फायदा होगा। तो दुनिया के मामले में सब्र करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसका जाहिर फौरन दुनिया में नतीजा दिखता है। मुश्किल तरीन सब्र दीन के मामले में सब्र है, वजह ही नहीं समझ आती सब्र करें क्यों, क्या थोड़ा हुआ था हमारा इस दीन के बगैर कि हमने अपनी जान पे मुश्किलें डाल ली। क्या मज़े से सोते थे, क्या मज़े से खाते थे उठते थे, ना कोई पूछता था ना जागता था। आप बाजार जाते हैं, 5-6 घंटे वॉक करते हैं, चलते हैं, खपते हैं, सर में भी दर्द होता है, फिर भी मुस्कुराते हुए आते हैं, क्यों कि थैलों के थैले भरे हुए हैं, वही गुड़िया पटोले गुड़िया की चीज़ें देख देख के हम खुश हो रहे होते हैं कि जिसको अल्लाह मताउल गुरूर कहता है, लेकिन हम खुश हैं क्योंकि हमारे हाथ में कुछ आ गया। दीन के लिए निकले, सफ़र करें, चलें फिरें, बहुत काम किए, थके, मिला के एंड ऑफ द डे घर वालों की डांट, पहले दीन के तकाजों के मसले, फिर घर वालों को साथ मैनेज करना, तो पता क्या चला कि सबसे मुश्किल सब्र वो होता है जिसमें एक बंदे को अनदेखी जन्नत के लिए सब्र करना पड़ता है। और इस सब्र का यहाँ हुक्म है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू इस्तईनू बिस्सब्री वस्सलात, मुश्किल तो होगी, सब्र तो करना पड़ेगा। पिछली आयतों से जोड़ लीजिए तो यहाँ मुसलमानों को सब्र की दावत है, जो किबले की तब्दीली पे एतराज़ात उठे थे यहूद की तरफ से, कहा खामोश, इनके ताने सुन लो, इनकी बातें सुन लो, अज़ियतें पहुंचाते हैं सब्र कर लो, अल्लाह ने तुम्हें कह तो कर लो, डोंट वरी। दूसरा देखें इस आयत का पिछली आयतों से रब्त, तो पीछे जिक्र का तस्करा था, फज़कुरून यज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको 11 मुख्तलिफ एंगल दिखा दिए थे जिक्र के, और आपने देखा होगा वो पूरा दीन ही था, इबादात पूरी उसमें आती हैं। तो इस पे सब्र करो, जो अल्लाह के दीन के अंदर हुक्म है उनको मानने पे सब्र करो, इबादतों पे सब्र करो, नमाज पे सब्र करो, मुशक्कत पे सब्र करो। फिर तीसरा, अगर आप इसका पिछली आयत के साथ रब देखें ना, तो पीछे बात ही वश्कुरूली वला तकफुरून, शुक्र पे सब्र। ये कौन सा सब्र है? ये नेमतों के मिलने का सब्र है। अब जरा आप सारी चीजों को सामने रखें, तो सब्र के तीन मुख्तलिफ दर्जे। नंबर एक, अल्लाह ताला ने इंसान को किसी मुश्किल में डाल दिया, जिस्मानी कल्बी रूहानी, ये आगे बातें आने वाली हैं, इसलिए मैं इसको एक पेराई के सूरत में आपके साथ दोहरा देती हूँ। आती है ना बीमारियां भी आती हैं, गम भी आते हैं, सदमे भी आते हैं, सब्र करना है। ये सब्र का सबसे हल्का दर्जा है। कोई मर गया, आपने इन्ना लिल्ला पढ़ दिया, कोई बीमार हो गया, आपने अल्लाह माजुरनी फी मुसीबती पढ़ दिया, ये बहुत हल्का दर्जा है सब्र का। इससे दूसरा दर्जा, सेकंड स्टेज क्या होती है, कि जिन बातों के करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उनको करने में जो तकलीफ आती है, उस पर सब्र करो। कैसे? नमाज पढ़ते हैं ना, ठंडे पानी से वजू करना पड़ता है, सब्र करो। नमाज पढ़ते हैं, जिस्म थकता है, क़याम करते हैं तो पांव सूजते हैं, सब्र करो। हज करते हो, सारे का सारा सब्र है, ठीक है। तो दूसरा दर्जा क्या हुआ, कि डूज पे अमल करना, ये निस्बतन उसकी मुश्किल है पहली की। और तीसरा इंतहाई मुश्किल दर्जा, ना बर्दाश्त होने वाला दर्जा क्या है, कि जिन बातों से अल्लाह ने रुकने का हुक्म दिया है, उससे रुकने पे सब्र। गीबत मचल रही है जुबान पे, नफ्स अंगड़ाइयां ले रहा है, बात करनी है, बतानी है दूसरों को, अल्लाह कहता है खामोश, इस्तईन बिस्सब्री वस्सलाह, बी पेशेंट, बी पेशेंट, सब्र करो। आप अल्लाह के खौफ से गीबत को दिल में ही पेट में ही रोक लेते हैं, पेट में दर्द शुरू हो जाए, पेट में मरोड़ उठने लग जाए, सब्र करना जुबान पे नहीं आएगा, क्योंकि मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीत, जुबान पे आ गया तो बहुत बड़ा फितना उठ जाएगा। दिल चाह रहा है गंदी चीज देखने को, आंखें भी बेचैन है, ख्वाहिशात दिल में आ रही हैं, आप कहते नहीं देखनी, पसीने पसीने हो जाता है बंदा डोंट्स पे रुकने पे। और मैंने एक दफा एक जुमला कहीं बोला, और हमारी एक साथी है वो वहां थी, उसके बाद काफी अरसे के बाद मिली और फिर कई दफा मुलाकात हुई, तो हमेशा वो जुमला याद दिलाती थी, कहती थी मुझे आपके इस जुमले ने बहुत कुछ समझने पे मौका दिया और मैंने इससे बहुत सीखा। और वो जुमला क्या था, कि बहुत सारे हुक्म हम मान लेते हैं, नमाजें पढ़ लेते, ओके, रोजे रख लो, ओके, सदका कर दो, ओके, वॉक कर लो अल्लाह के रास्ते में, ओके 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 ओके, इतनी बातें माननी आसान है, लेकिन एक बात पर रुकना मुश्किल है। डोंट्स मुश्किल लगते हैं, डूज करने आसान लगते हैं, इसीलिए तो आज आपको उम्मत मुस्लिमा चूं चूं का मुरब्बा बनी हुई दिखती है, कि नमाजें भी नहीं छोड़ते और गाने भी नहीं छोड़ते, हज पे हज भी हैं और साथ अपनी मर्जी की गंदी जगहों पे भी जाते हैं। तो ये हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि सबर का ये जो तीसरा दर्जा है ना, कि मनहियात, मनहियात अब मुश्किल लफ्ज़ है, डोंट्स का तर्जमा है, रुकने वाली बातों से रुकना, इस पे सबर बहुत मुश्किल है। इसी के अंदर शुक्र का सबर भी समझ लें। मैंने आपको बताया कि सबर गिरगट की तरह रंग बदलता है, सात रंग होते हैं ना गिरगट के, या कौसो कज़ा कह लें, नीले पीले लाल हर रंग के होते हैं। इसी तरह सब्र के इतने मुख्तलिफ एंगल हैं कि आप पूरे दीन के लफ्ज़ को बीच में लिखें और आप एरोस लगाएं, आप बनाएं इस पे एक्टिविटी। हमारे दीन का आगाज़ क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानना। अगर सब्र ना हो तो बंदा अल्लाह को एक नहीं मान सकता। हर तरफ तो आपको एक खुदा दिखता है, हर तरफ तो एक बुत है जो अपनी चमक दमक रंग रूप के साथ दिख रहा है, और पेगन और मुशरिकाना कल्चर तो इतना कलरफुल होता है कि वो रंग फेंक फेंक के आपके दिल को अपनी तरफ माइल करते हैं। तो एक अल्लाह पे सब्र करना, हज़रत मूसा और बनी इसराइल के किस्से में पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे, इनका मुकालमा हुआ था, हमसे नहीं सब्र होता है खुदा पे। मक्का वालों ने ये कहा था, हम नहीं सब्र कर सकते है खुदा पे, हमें 360 बुत चाहिए। ठीक है, तो तौहीद क्या है? एक अल्लाह पे सब्र करना। उसके नीचे चलिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही, उनका रसूल मानना। सच बताइए, आज दुनिया में कितने लीडर दिखते हैं, कितने बड़े बनते हैं, हर एक तो अपने पीछे लगाना चाहता है। अगर बंदे के अंदर सब्र ना हो तो अतीउल्लाह और अती रसूल पे रुक नहीं सकता। फत्तबेउन युहबिबकुमुल्लाह पे सब्र हो नहीं सकता अगर बंदा अपने आप को जमा के ना रखे। रसूल तो एक कायद थे ना, कि जिन्होंने ख्वाहिशों पे पाबंदी लगाई। आपको आज ऐसे कायद मिलते हैं, वो कहते हैं आओ हमारे हाथ पे बैत करो, हम तुम्हारे गुनाह बख्शवाने को तैयार, हमें आके चढ़ावे चढ़ा दो, हमें नजरे नियाजे दे दो, हम तुम्हें माफ। पार्डन लोगों ने अपने हाथ में रख ली, गुनाहों की माफी लोगों ने अपने हाथ में रख ली। मैंने पीछे तذکرہ किया था कि एक ऐसी स्टूडेंट थी कि जो एक ऐसे फिरके को छोड़ के मुसलमान हुई थी कि जिसमें बड़ी रंगीनी है, तो उनका जुमला मुझे फिर याद आ गया। उन्होंने कहा कि उस्ताज़ा बहुत सब्र होगा जिसके अंदर वो ये मजहब छोड़ के इस्लाम पे आएगा, क्योंकि इसमें तो रंगीनी इतनी है, स्लीवलेस तक पहन सकते हो, बॉयफ्रेंडशिप गर्लफ्रेंडशिप उनके मजहबन जायज़ है, नमाज की अब जरूरत नहीं, बस जमात खाने में इतना चंदा दे दो, इसमें ये दे दो वो दे दो। तो ये जो रंग बिरंगे उलमाए कराम और रंग बिरंगे लीडर दिखते हैं ना, ये सब्र ना करें तो अल्लाह के नबी पे बंदा जम नहीं सकता। तीसरी चीज देखिए, अभी दीन इस्लाम में क्या आती है, अकीमुस्सलात। सच बताइए, नमाज पढ़ी जा सकती है अगर सब्र ना हो? यहाँ तो बात भी है वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात की, सब्र और नमाज साथ साथ। कैसे? अमूमन इंसान का नफ्स क्या चाहता है? खाना, पीना, बोलना, सोना, अच्छी अच्छी बातें सोचना। क्या ये पांच चीजें आप नमाज में कर सकते हैं? खाएंगे तो नमाज टूट जाएगी, बोलेंगे तो नमाज टूट जाएंगी, सोएंगे तो नमाज टूट जाएगी, इरादे के साथ इधर उधर की बातें सोचेंगे नमाज टूट जाएगी, चलना फिरना शुरू कर देंगे नमाज टूट जाएगी। तो क्या पता चला कि नमाज पढ़ी नहीं जा सकती जब तक सब्र ना हो। और जिनको बोलने की और सेल फोन पे खेलने की आदत है, उनके लिए तो वो 10 मिनट ही मौत के बन जाते हैं, जिस दौरान उनको फोन नहीं अटेंड कर पाना। ठीक है, आगे चलिए। नमाज के बाद ज़कात। ज़कात बंदा दे सकता है अगर उसके अंदर सब्र ना हो। अपनी कमाई 100 रुपए की, उसमें से आप अपने हाथ से 2.5 रुपए दे के आ जाए, मुमकिन नहीं। टैक्स के नाम पे भी देते हैं तो चीखते भी देते हैं ना। सदका खैरात बंदा दे सकता है जब तक सब्र ना हो। गोया कि ये भी हो गया। रोज़ा, हदीस में एक चौथा मानी सब्र का, वो रोज़े को भी कहा गया है। हदीस में आता है कि रोज़ा क्या है? शहरो सब्र, क्योंकि रोज़े में तो इंतहा दर्जे का सब्र है ना। ये सारे सब्र की किस्में उसमें मिल जाती हैं। ना देख सकते हैं कोई चीज, ना चीज बोल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना नफ्स के तकाजे पूरे कर सकते हैं। आप इस सारी चीजों को फैलाते जाएं, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम से लेकर हज, जिहाद और उसके बाद मामलात पे चल पड़े। रिश्तेदारों के हकूक दिए जा सकते हैं अगर आप में सब्र ना हो। वो आपके साथ बुरा करें, आप उनके साथ अच्छा कर सकते हैं। कनात क्या है? सब्र। शुक्र क्या है? सब्र। तो सब्र पूरे दीन का खुलासा है। बुखारी की बड़ी खूबसूरत रिवायत है जिसमें सब्र को दीन का हिस्सा कहा गया, यानी अल्लाह ये नेमत देता ही नहीं है किसी को अपन जब तक के वो मांगे ना। अब इन सारी सब्र की जो तारीफात है ना, इसमें एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, और वो क्या है? एक होता है तकलीफों के आने पे सब्र, जो हमने अभी तक डिस्कस किया। एक बड़ा अनोखा सब्र है, लाडला सब्र, और वो क्या है? नेमतों के मिलने पे सब्र। ये बड़ा मुश्किल है। लोग दुखों पे, तकलीफों पे, गमों पे, बीमारियों पे सब्र कर लेते हैं, नेमतों पे सब्र नहीं कर पाते, खुशियों पे सब्र नहीं हो पाता। कभी पहला बेटा, उसकी शादी है, अब कैसे सब्र करें? रुक गई ना, रोकना है। अल्लाह कहते खुशी है, इस हद से आगे ये गलत काम नहीं करने। अब कहते नहीं, क्या करें, खुशी बड़ी है, पहला बेटा। इसका क्या मसला है? ये सबसे छोटा बेटा है। इसका क्या करें जी? ये इकलौती बेटी है। इसका क्या करें कि जी घर बहुत बड़ा मिला। जब बंदे को कोई नेमत मिलती है ना, तो सब्र का सबसे मुश्किल पर्चा होता है। और पीछे बनी इसराइल के तनाजर में आपको सुनाया था कि फिरौन की गुलामी में जब तक थे सब्र पे रहे, वो इज़तरारी सब्र था, उसमें कामयाब हुए। अल्लाह ने उनको इनाम दिया, फिरौन को डुबो दिया, वहां कामयाब थे। ज्यों ही फिरौन की गुलामी से निकले, वादी ती में आए, कहने लगे लन नस्बिर अला तौमिन वाहिद, तो खुशियों का सब्र नहीं कर सके। आज भी उम्मत मुस्लिमा का यही मसला है। कि वो दुखों के वक्त सब्र कर लेते हैं। दुख वाले घर, मैयत वाले घर में कोई नहीं कहता सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है। खुशियों पे कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि औरतें अलग बैठे मर्द अलग बैठे। बाकी बात तो वो सच कहते हैं, इतनी मेहनत से जो सच संवर के आए, ये क्या वह क्यादी मखलूक उससे महरूम रह जाए। औरतों में बैठ के दिखाएंगे औरतों ने कौन सा खुश होना है। सच बताएं, औरतें दूसरी औरतों के कपड़े देख के खुश होती हैं, वो तो जल के भुन जाती हैं। देखते तो वो खुश होते हैं बेचारे जिनको नहीं होना। तो गम तो बहुत पड़ गया, इतनी मेहनत से सजे संवरे, अब क्या सर पे दुपट्टा ले ले। अब दुल्हन को मेकअप करा दिया और अब उसको कहेंगे वजू करो नमाज पढ़ो। ये सबर मुश्किल है। और जब कोई कौम खुशियों के सबर में अपने आप को नहीं रखती ना रोकती, तो फिर अल्लाह ताला उसको खसो खाशाक की तरफ पीस देता है। मत सोचिए कि आज ही सिर्फ हमारे पास खुशियाँ आई हैं, सहाबों को भी खुशियाँ मिलती थी, अल्लाह के नबी को खुशियाँ मिलती थी। हजरत हंजला की नई नवेली शादी थी और कॉल आई जहाद की, चलो निकलो फी सबीलिल्लाह, निकल गए, निकल के गए और शहीद हो गए। ये सब्र है। आपकी अपनी प्यारी बेटियां, आपके अपने प्यारे बच्चे जिहाद के रस्तों में सब्र करवाए दे के जा रहे हैं, बदर के लिए निकल रहे हैं, तो आपकी एक बेटी बीमार है। अब हम होते कहते जी पोस्टपोन, हो दीन का काम भाड़ में जाए, ठेका नहीं लिया हुआ हमने सबका, हम तो नहीं है, होता है तो कर लें छुट्टी। बेटी बीमार है, दुखी है, अल्लाह के नबी ने कहा हाँ दामाद तुम बैठो, तुम खिदमत करो, मैं चलता हूँ। हजरत उस्मान को छुट्टी मिल गई कि आप टेक केयर करें। और उधर से बदर की खुशखबरी लेके पलटे, खुशी थी ना, और आते ही देखा तो बेटी का जनाजा जो था वो दफनाया जा रहा है। इस्तईन बिस्सब्री वस्सलाह। तबूक के लिए निकले ऐसे ही, जैसे यहाँ आप इस वक्त समझे यूरोप में, तो आपको एशिया के किसी मुल्क में जाना पड़े, इतना लंबा सफर। और बेटी फिर दूसरी बीमार है, क्या उनकी जिंदगी में खुशियां और गम साथ नहीं थे? हम होते तो उस वक्त लंबी छुट्टी का पर्चा दिख के जा चुके होते, पर्चा भी तब देते जब कोई एहसास होता, हम तो वो भी ना देना पसंद करें। और आपने कहा नहीं उस्मान आप इनकी टेक केयर करें, मैं जाता हूँ। इतने मवाक़े अल्लाह के नबी की जिंदगी के वस्ताइन बिस्सब्र वसलात, के दीन को राइज करने, दीन को नाफिज करने में आपने अपने जाती रिश्तों को पीछे डाल दिया, अपनी जाती कुर्बानियां दी। आपकी बेटी का बच्चा बीमार है, कितना प्यारा होता है हमें नवासा पोता, मेरा ले अपने बच्चों से ज्यादा लोग अपने बच्चों के बच्चों से प्यार करते हैं। और आपकी बेटी का बच्चा बीमार है और वो पैगाम दे रही है कि अब्बा आ जाए जरा बच्चे को देख लें, तो आप किसी दीन के काम में थे? कहा कि बेटा इस वक्त मसरूफ हूँ। थोड़ी वक्त गुजर गया, फिर पैगाम आया कि अब तो बच्चा फौत हो गया। काम खत्म हुआ तो वापस आके फिर उस बच्चे को गोद में लिया और आपकी आंखों में आंसू थे, और कहा इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लहू मा आता व कुल्ल शैइन इंदहू बि अजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वल तहतसिब। ये ताज़ियत की दुआ है। कहा मेरी बेटी अल्लाह ही का था जो उसने दिया, जो ले लिया उसका है, और जो भी पास है वो भी उसका है, यानी उम्मीद रखो ये भी किसी वक्त चला जाएगा, क्योंकि हर चीज उसने एक खास वक्त तक के लिए हमें दी है। बस चाहिए कि सब्र करो और इस पे अल्लाह ताला से अजर मांगो। तो ये है या अय्युल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, अपनी जात के तकाजों को पीछे डालना और दीन के तकाजों को आगे करना, ये है इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात। जो कौम अल्लाह के दीन को सीखने के लिए, सिखाने के लिए और उसमें मदद करने के लिए ये सब्र नहीं कर सकती, वो कभी शहादत हक की गवाहियां नहीं कायम कर सकती, वो उम्मत वसत का मुकाम हासिल कर ही नहीं सकती। अल्लाह ताला कहते हैं कि मदद मांगो। अच्छा सवाल पैदा होते हैं कि क्या इनके रिश्ते नहीं थे, दर्द नहीं होती थी, क्या वो कठोर लोग थे? ना इनको किसी के मरने का गम, ना इनको किसी के जीने की खुशी, मुजहर तो यही लग रहा है। तो यहाँ आपको उसका रास बताया जा रहा है कि नहीं, इंसान थे, पत्थर दिल लोग नहीं थे, लेकिन मकसद प्यारा था, धुन सवार थी, पैशन था, दीन उनका मिशन था, ये उनका प्रोफेशन नहीं था, कारोबार नहीं था। देखिए पैसे के लिए जब बंदा दीन का काम करता है ना, पैसे की भी एक हद होती है। एक वक्त आता है जब नींद आई कहता है जाओ छुट्टी काट लो मेरी, मैं नहीं आ रहा, खत्म। पैसे के लिए दीन का काम करने वाले कभी नहीं कर सकते, क्योंकि दीनदारी फिर दुकानदारी बन जाएगी, उससे ज्यादा पैसा कोई दिखाएगा वो वहां चले जाएंगे, वो नहीं उठते। एक चीज है जो बंदे को उठाती है और वो ये कि वो उसका पैशन बन जाए। आप देखे जब हमारे जुनून सवार होता है तो हमें तो रातों को भी नहीं नींद आती, जोश होता है, रात को कपड़े रख के बच्चे सोते हैं क्योंकि सुबह उठ के पिकनिक पे जाना है। तो उनको धुन सवार है। बिल्कुल इसको यूं समझें कि जैसे आप काम कर रही हैं बड़े शौक से किचन में, क्योंकि रात को आपकी दोस्तें आ रही हैं, आपके पसंदीदा मेहमान हैं। कितनी दफा सच बताएं, औरतों के हाथों पे कट लगते हैं, प्याज काटते हुए, सब्जी छीलते हुए, कभी लेके बैठ गई पट्टी बांध के, दावत ही मनसूख कर दो क्योंकि चोट लग गई है। याद भी नहीं रहता, चोटें तब याद आती हैं जब सारे मेहमान चले जाएं तो रात को बिस्तर में लेटे, अच्छा यहाँ चोट लगी थी, यहाँ पाँव का नाखून टूटा था क्या, उस वक्त धुन सवार थी। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें धुन सवार कर दे। ये अपना हाल बार बार पूछना ना, नफ्से देखना, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं मुनासिब हूँ, अब सर्दी तो नहीं, अब गर्मी तो नहीं, अब मैं आ सकती हूँ, आई कैन डू इट दिस, वो लोग नहीं कर सकते। याद रखिए, दीन का काम नाजुक मिजाज लोग कभी नहीं कर सकते, सेंसिटिव लोग कभी नहीं कर सकते, ये तो पत्थर की चट्टानों वाले लोग काम करते हैं। दुनिया में इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, और हाल ही पूछते रहे, अभी जेट लॉग से ही नहीं निकले, अब वो दीन का काम कहाँ करें, अभी थकन बड़ी थी तो अब दीन का काम क्या करें, अब एक दिन काम ज्यादा कर दिया तो अगले दिन छुट्टी चाहिए, ये नहीं हो सकता। आप इस एक आयत की तफसीर में पूरा कुरान पढ़ेंगी कि सहाबा किराम अभी एक जंग से नहीं निकलते थे, दूसरी जंग में जाना पड़ता था, थोड़ा थोड़ा जिक्र तो पीछे हुआ है, आगे आपके साथ होगा। अभी जख्म नहीं मुंदमिल हुए उहद के कि उनको हमरा उल असद के लिए जाना पड़ा, अभी गजवे अहजाब की वो ठंडी चोटें नहीं बर्दाश्त कर पा रहे कि बनी कुरैजा के लिए जाना पड़ता। चलते थे, कोई नहीं पलटता तो कहते थे आपने कह दिया हम जाने को तैयार है, क्योंकि इस तईन व सबरी व सलात। तो इनर्जी कहाँ से मिलती है? अब सवाल ये है मेरा आपसे भी और अपने आप से कि ये इनर्जी कैसे मिली। तो पहला तो बता दिया कि दीन के काम को अपना पैशन बना लें। आपका इस वक्त दीन का काम क्या है? ये कोर्स, ये आपका इल्म सीखना, आपका इस क्लास में आना, इसको पैशन बनाए ना। सुबह उठ के आपने अपना हाल पूछना है, पेट में दर्द है होता रहे, हु केयर्स, पीछे आके लेट जाए, उल्टियां आती हैं साथ एक बर्तन ले आए उसमें वॉमिट कर लें, कुछ नहीं होगा। प्रेग्नेंट हो गए पीछे बैठ जाए खिड़की के पास, आपको नोजिया नहीं होगा, होता है तो होता रहे, मैंने अपना हाल नहीं पूछना। बुखार है कोई बात नहीं, एक ही बजाय चार कपड़े पहन के आ जाए, हाल नहीं पूछना अपना, वरना याद रखिए पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल गैर मखसूस तरीकों से शैतान आपको इस काम से रोक देगा। सर्दी गर्मी धूप छांव बर्दाश्त, उनकी जिंदगी में ये उनकी डिक्शनरी में लफ्ज ही नहीं होते। बाहर लोग कहते हैं कि होता कुछ नहीं है, सबको सब कुछ होता है, क्योंकि सब कमजोर है, सब इंसान है, लेकिन वो अपना हाल नहीं पूछते और दूसरों को अपना दुख नहीं सुनाते। फिर पहली चीज पैशन, दूसरी चीज चलिए मान लिया पैशन भी बन गया फिर भी इंसान है तो वे सब्र। जब दीन के रास्ते की को मुश्किल आए जाए नमाज पे खड़े हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लम के बारे में सहाबा किराम कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी के ऊपर कोई मुश्किल पड़ती आप नमाज की तरफ भागते, जब आपके ऊपर कोई मुश्किल आती आप दुआएं मांगते, या हय्यू या कय्यूम बि रहमतिका अस्तगीस। आज हमने इन दुआओं से तो खुद को बिल्कुल काट के रख दिया, क्योंकि हम खुद बड़े खूबसूरत लफ्ज़ बोल लेते हैं, हमें नबी सल्लम की दुआओं की क्या ज़रूरत है। तो तीसरी चीज़ दुआएं मांगें, अल्लाह से कहें कि अल्लाह कोई ज़िंदगी में ऐसा मामला ना आ जाए कि मैं तेरे रास्ते से हट जाऊं। अपने आप को इन नमाजों से रखें, जोड़ें नमाज दुआ कुरान, ऐसे लोगों के पास बैठें जो आपसे ज़्यादा दीन का काम कर रहे हैं। न्यू मुस्लिम्स की कहानियां पढ़ें जो रास्ते उनके थे। मैं यार आप तो इधर इतने नरम गरम घरों से निकल कर नरम गरम कुर्सियों पे आके बैठ जाते हैं, आप उन लोगों को पढ़ें जो जाके जंगलों में से गुजर गुजर के जाते हैं और वहां जाके कुरान सीखते हैं और किताबें पढ़ते हैं। तो हमेशा एक इंसान अपने ऊपर एक गहरी नजर रखे कि मैंने अपने आप को कहाँ तक देखना है। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि इससे फायदा होगा। नमाज जो है ना, ये इंसान को एनर्जी देती है, फ्यूल टैंक है। शर्त एक ही है कि नमाज की रूह जिंदा हो। मुर्दा नमाजें तो हम फर्ज भी पढ़ लेते हैं तो कुछ नहीं होता, या नोट करें बिस सलात जो ये फर्ज नमाज नहीं है, वो तो पढ़नी पढ़नी है, खुशी गम दुख सुख, ये जो बिस सलात है ये नफिल नमाज है। आजमा के देखें, कोई आपको दीन का कोई ताना देता है, किसी ने आपके निकाब के ऊपर बात कर दी, हिजाब पे बात कर दी, किसी ने आपके कुरान पढ़ने पे बात कर दी, किसी ने सरे महफिल दिल तोड़ के रख दिया आपका, आप तो बड़े शौक में जाके बता रहे थे कि क्लास ली ये किया, उन्होंने कैसा जुमला बोला कि आपका दिल चूर चूर हो गया, वहीं से उठें सीधा वजू करें उनके साइड पे खड़े होकर नमाज पढ़नी शुरू कर दें। बिल्कुल वही मिसाल जो पहले कभी दी होगी आपको कि जैसे पेट्रोल पंप है ना, वहाँ जब गाड़ी में पेट्रोल डलता है तो गाड़ी चलती है, नमाज मोमिन का पेट्रोल पंप है, नमाज से ईमान की एनर्जी मिलती है, गैस मिलती है। जब ये लेवल कम होने लगता है ना, थोड़ी बहुत नेमते काम करने से, फौरन जाके फिर काम शुरू कर दें, फिर जाके नमाज पढ़ें थोड़ी थोड़ी देर बाद। ये जो 5 दफ़ा नमाज पढ़ाई जाती है ना, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे दिन में कम अज़ कम हम लोग 2-3 बार तो खाते ही हैं ना। तो रूहानी खाने का नाम नमाज है। ताल्लुक बिल्ला की दलील नमाज है। ताल्लुक मेरा अल्लाह से कैसा है, आप में अपनी नमाज देख लो। इसमें इंशाल्लाह आपको दिखेगा। एक सहाबी थे, किसी जंग में उनकी बैक पे हड्डी के अंदर तीर घुस गया। अब आपको पता है, घुस तो गया होगा एनर्जी के साथ, निकालने में तकलीफ हो रही थी, इतनी तकलीफ थी कि छोड़ दिया। इतने में नमाज का वक्त हो गया, कहने लगे कि नमाज के दौरान कोशिश करना, क्योंकि मुझे अक्सर होश नहीं रहता अपनी नमाज में कि मैं कहाँ हूँ, शायद कम तकलीफ हो। नमाज भी पढ़ ली, सलाम फेर के कहते हैं, लोगों मैंने तुम्हें मौका दिया था तीर निकालने का, तो क्यों नहीं निकाला? कहा, अब क्या बात करते हैं, हमने तो अभी पहली रकत में ही थे तो निकाल लिया था। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। असल मसला ये कि हमारी तो नमाज में भी अल्लाह से मुलाकात नहीं होती, हमारी तो नमाजें टकरे हैं। वो कहते हैं ना, दिल जब तेरा नमाज में ना हो, क्या मिले तुझे इस नमाज से? तो नमाजों को जिंदा करें, दुख सुख सुना के आए रब को, फिर देखिए कैसे आपको फायदा होता है।
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.